नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है औकात, जिसे लिखा है मालती जोशी ने। तो चलिए कहानी शुरू करें। औकात। खेल अपने पूरे यौवन पर था। मीना की पतली नाजुक उंगलियां अपना कमाल दिखा रही थी। हर शॉट के साथ एक एक गोट भीतर जा रही थी। यह क्वीन और आ जाए बस, फिर तो गेम उनका ही है। सामने बैठे परवीन भैया बार बार जता चुके हैं, मिन्नो हमारे भरोसे ना रहना, कुछ भी करना है तो तुम ही को करना है। अरे मरो अब बस भी करो, कूलर की घरघराहट को भेदती मौसी की उनिंदी आवाज उभरी। कसम है जो इस खटखट के मारे जरा भी आंख लगी हो। मम्मी अब झूठ तो मत बोलो, रीता ने तपाक से जवाब दिया। 1 बजे जो मुंह ढाप कर सोई हो तो पूरे 3 घंटे बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है। तो क्या 4 बज गए, मौसी ने मन ही मन हिसाब लगाया। अरे तो अब चाय वाई नहीं बनाओगी या खेलती होता रहेगा? शॉट लगाते हुए मीनू का हाथ आकरण ही कांप गया। चांस बेकार चला गया। नीता ने लपक कर स्ट्राइकर उठाते हुए कहा, मम्मी अब प्लीज डिस्टर्ब मत करो, इतनी दोपहरी में तुम्हें चाय की पड़ी है। मीनू जानती है एक बार चाय की तलब होने पर मौसी से मिनट भर सब्र नहीं होता। उसने कनखियों से देखा, मामा जी की रिंकी पिंकी उपन्यासों में ऐसा सिर डालकर बैठ गई मानो वो कोर्स की किताब पढ़ रही हो और इम्तिहान एकदम सिर पर हो। अलीगढ़ वाली सुषमा जीजी अच्छी खासी मीनू के पास बैठकर खेल देख रही थी। मौसी के जागते ही वे चादर ओढ़कर वहीं फरस पर लंबी हो गई। रोहित मोहित तो लड़के थे, उन्हें कोई खतरा ही नहीं था। मीनू मौसी की अलसाई पुकार आई। मीनू जैसे उसके लिए तैयारी बैठी थी, एकदम उठ खड़ी हुई। आहा कैसी रानी बिटिया है, बस यही है जो मेरा दर्द समझती है, बाकी तो सब बस खाने भर को है। अरे गेम तो पूरा करती जाओ, तीनों साथी चिल्लाए। नहीं अब मन नहीं है, तुम रिंकी पिंकी को बिठा लो। अब मन क्यों होगा, मम्मी ने तारीफ जो कर दी। सच मम्मी, यू आर एक परफेक्ट बोर। किचन में जाते हुए मीनू नीता का भुनभुनाना सुनती रही, सुनकर अनसुना करती रही। पर उस आवाज़ को वह कैसे अनसुना कर दे जो बड़े विश्वास के साथ, बड़े अधिकार के साथ केवल उसके लिए ही उठती है। पिछले 15 दिनों से यही सब तो हो रहा है, वह बड़ी ललक के साथ यहाँ आई थी। वैसे तो इन दिनों शादियों में जाना उसने छोड़ ही रखा था। ऐसे अवसरों पर अपने अभाव और अधिक कचोटने लगते हैं। जहाँ जाओ उसकी अपनी शादी की चर्चा छिड़ने लगती है, लोगों की बातें सुन सुनकर अपने पर ही करुणा उपजने लगती है। पर यहाँ आते हुए उसका मन उत्साह से भरा हुआ था। नीता की शादी थी और नीता सिर्फ उसकी मौसेरी बहन नहीं थी, हम उम्र होने के नाते सखी सहेली भी थी। इसीलिए तो मौसी ने उसे 8-10 दिन पहले से बुला लिया था और वह भी भागी चली आई थी। वह तो यहाँ आकर पता चला कि मीनू की जरूरत नीता को नहीं, खुद मौसी को थी। आते ही उनके सामने ढेर सी साड़ियाँ पटक दी गई, किसी पर गोटा टाकना, किसी पर फूल पत्ती काटनी, फॉल तो खैर सभी में लगनी ही थी। नीता की अटैचियाँ जमाने का काम भी किसी अरे गहरे को नहीं सौंपा जा सकता था। फिर शादी का घर था, ढेर के ढेर मेहमान और उनकी उतनी ही फरमाइशें। कोई चाय मांग रहा है तो किसी को कॉफ़ी चाहिए, किसी को नींबू पानी चाहिए तो कोई लस्सी के लिए कलप रहा है, कोई काली कॉफ़ी में नींबू डालकर पी रहा है तो किसी ने शक्कर की बीमारी है, फीकी चाय चाहिए। ये नखरे भला नौकरों से झिलते हैं, रसना के दर्जनों पैकेट खोल खोल तरह तरह के शरबत खोलना क्या नौकरों की बस की बात है? मीनू भी बेचारी चक्कर घिन्नी की तरह घूम घूम कर सबकी फरमाइशें पूरी करती रहती। 3-3 नौकर हैं, किस काम के, उनका सारा वक्त खाना बताने ही निकल जाता है। फिर मौसी को उन लोगों पर विश्वास भी तो नहीं, सब लोग मगन होते हैं चित्रहार में कि मौसी को एकदम सनक सवार हो जाती है। मीनू बेटे जरा रसोई में झांक के तो आ, रामचरण तो अपना जाना परखा है पर इन दोनों छोकरों का कुछ ठीक नहीं, मुझे तो मरे उठाए गिरी लगते हैं। फिर मेहमानों से मुताबिक होकर कहेगी, मेरा तो बस इसी पर बस चलता है, ये मेरी महारानियाँ तो 24 घंटे टीवी से चिपकी रहती हैं, माँ मर भी रही होगी तो कहेंगे जरा रुक जाओ, ये सीरियल ख़त्म हो जाने दो। अच्छा है हमारी मीनू को अभी टीवी की बीमारी नहीं लगी। मौसी जैसे इस बहाने सबको जता देना चाहती थी कि मीनू के घर टीवी भी नहीं है। वह शर्म से गड़ जाती। रसोई से लौट कर भी वह फिर सबके बीच बैठकर चित्रहार देखने का साहस नहीं जुटा पाती। घर में इतने सारे लोग थे, रोज ही सैर सपाटे का प्रोग्राम बनता था, पर मीनू को जाना नहीं हो पाता था। सुबह अगर वे लोग स्विमिंग के लिए जाते तो मौसी कहती, मीनू तुझे तो तैरना नहीं आता ना, तू ऐसा कर अपने मौसा जी को चुपचाप आमलेट बनाकर खिला दे। ऊपर के कमरे में हीटर रखा है, देख किसी को कानो कान खबर ना हो। शाम को लोग बाग घूमने के लिए निकलते तो मौसी को याद आ जाता, अरे किशमिश चिरौंजी तो अभी साफ ही नहीं हुई है, अब यह काम भला नौकरों पर थोड़ी छोड़ा जा सकता है, मरे आधे तो गटक ही जाएंगे। हॉल में VCR पर कोई फिल्म चल रही होती और मीनू भीतर वाले बरामदे में बैठकर हलवाई के सामान की लिस्ट बनाती रहती। अपने सुंदर अक्षरों पर तब उसे बड़ी कोफ्त होती। शादी का घर था, कामों की तो कोई गिनती नहीं थी। मौसी उसे एक क्षण भी आँखों से ओझल नहीं होने देती थी। सबसे कहती फिरती, जिज्जी की लड़कियाँ सचमुच बहुत सुघड़ है, सुघड़ और शालीन, स्वभाव तो ऐसा जैसे मक्खन। हमारी ये देवियाँ तो नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देती। मक्खन है तभी तो जरा सितारी पर पिघल जाती हैं। मीनू को अपने आप पर कोफ्त होती। वहाँ सब छोटे बड़े आराम फरमा रहे हैं, चाय बनाने का ठेका जैसे इसी ने ले रखा है। तीस पर सितम यह कि बर्तन सब के सब मांजने को हैं, ढंग की एक पतीली भी नहीं कि चाय चढ़ाई जा सके। नौकर हैं तो अपने किस काम के, वक्त पर या तो गायब रहेंगे या उसकी आवाज़ पर कान ही नहीं देंगे, उसके औकात जानते हैं ना। हार कर उसने एक पतीली साफ की, अभी तो कप प्लेटों का भी जुगाड़ करना होगा। वहाँ सब की सब महारानी बनकर बैठी रहेंगी, किसी से यह भी ना होगा कि आखिर ट्रे ही लगवा दें। अम्मा शादी से एक दिन पहले पहुँची थी, आते ही मामा जी ने उलाहना दिया था, जीजी तुमने क्या बिटिया को बांदी बनाकर भेजा है, छोटी जीजी उसे दिन भर नचाए रखती है। अम्मा तो मेरी गऊ है, सुख दुख तो उन्हें व्याता ही नहीं बोली। अरे तो क्या हुआ, काम करने से कोई घिस थोड़े ही जाता है, शादी का काम काज कोई बाहर वाले आकर थोड़े ही करवाएंगे, वो तो अपनों को ही करना पड़ता है ना। फिर मेरी मीनू की तो आदत है, मेरी गृहस्थी तो इन्हीं लड़कियों के दम पर चल रही है। मीनू को बहुत ताव आया, ठीक है इसे आदत है तो क्या, इसका मतलब यह है कि वह हर जगह खटती फिरे। अम्मा भी कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि बस। गुस्से की एक यही वजह नहीं थी, अम्मा नीता के लिए तो 700 की साड़ी लेकर आई थी, पर मीनू के लिए कुछ भी नहीं, जबकि अम्मा जानती थी कि शादी के पहनने लायक उसके पास कुछ भी नहीं है। अम्मा ने वायदा भी किया था और अब भी सूझ रही थी, क्या करे बिन्नो, यहाँ का नेक दस्तूर पूरा करते करते ही दम फूल गया, ऊपर से हम दोनों का किराया। आने को तो सब तैयार थे पर नंगे बच्चों को कहाँ लाती, पड़ोस की शर्माइन के भरोसे छोड़ आई हूँ। तेरी साड़ी के लिए कहा था पर तू तो अपने बाबूजी को जानती है, बिगड़ गए, कोई उसकी शादी हो रही है जो नई साड़ी चाहिए, फिर क्या करती। वो तो ऊपर वाले लता ने बताया कि आजकल साड़ियों के भी सूट चले हैं, सो तेरे बाबूजी की चोरी से वही बनवा कर लाई हूँ। अपनी 22 साल पुरानी बनारसी साड़ी को शहीद करके अम्मा जो सूट बनवा कर लाई थी उसे देख कर मीनू को रोना आ गया। जरी के बूटों का तार तार अलग हो रहा था, रंग भी जगह जगह से मध्यम पड़ गया था, न कपड़े में चमक शेष थी न जरी। दुख तो इस बात का था कि अपना सारा बजट ताक पर रखकर अम्मा जो साड़ी लाई थी उसे मौसी ने ठीक से देखा भी नहीं, बस एक बार हाथ में लेकर रख दिया। अरे जीजी इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी, पर उनके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वे खुश नहीं हैं, उन्हें शायद किसी और चीज़ की आशा थी। मामा जी चांदी का आइसक्रीम सेट लाए थे, छोटी मौसी कानों के झुमके लाई थी, नीता की एक बुआ जड़ाऊ कंगन लाई थी। इन चीज़ों के सामने 700 की साड़ी की क्या बिसात, अम्मा का चेहरा खुद ही बुझासा हो गया। शादी वाले दिन छोटी मौसी ने उनका मूड और ख़राब कर दिया। जैसे ही सब लोग तैयार होने लगे मौसी बोली, हाय जीजी दुनिया कहाँ पहुँच गई और तुम अभी पुरानी साड़ियाँ लथेड़े जा रही हो, भला ऐसा डिजाइन आजकल कोई पहनता है क्या। अम्मा तो रोनी रोनी हो आई, मीनू जानती हैं बरसों हो गए अम्मा अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी भी नहीं खरीद पाई, पर इस मजबूरी को छोटी मौसी क्या समझेगी, उनके यहाँ तो कंचन बरस रहा है। मीनू ने तय कर लिया था कि वे अपने रोज वाले कपड़े ही पहन लेगी, पर अम्मा का लाया वबन नमूना सूट नहीं पहनेगी। पर अम्मा का रुआसा चेहरा देखकर उन्हें और अधिक तंग करने की इच्छा नहीं हुई। वह जैसे ही तैयार होकर निकली, सब लड़कियों ने उसे घेर लिया। यह क्या, आज भी साड़ी नहीं पहनोगी? क्या करे, अम्मा हमारा ब्लाउज लाना ही भूल गई, उसने मिमिया कर कहा। तो क्या हुआ, मेरा पहन ले, मेरा तुझे फिट आ जाएगा, किसी ने कहा। फिर किसी ने ब्लाउज दिया, किसी ने उसके मेल खाती साड़ी निकाल कर दी, किसी ने नकली मोतियों का सिर दे दिया, तो किसी ने मैचिंग वाली चूड़ियाँ पहना दी। नीता की सहेली ने उसके काले घने बालों को नए अंदाज में सवार भी दिया। एक मेरी बहन ने उसे विदेशी सेंट से भी नहला दिया। बन सवर कर जब सब लोग बाहर आए तो बारात बस लगने ही वाली थी। दूल्हे को देखने की जैसे होड़ सी लग गई। चूड़ीदार पजामा, रेशमी शेरवानी और गलगीदार साफे में सजे उस राजकुमार को देखकर मीना का मन एक अनाम पीड़ा से करा उठा। जयमाला डालती हुई नीता के लिए ईर्ष्या की एक सूक्ष्म सी लहर उसके मन में उठी। सामान्य से रूप रंग की नीता पर वह भी इस समय किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। दूर से तो पहचानी भी नहीं जा रही थी। पहचानोगी कैसे, किसी ने टिप्पणी की, पूरे 300 का ब्राइडल मेकअप है। 300? हे भगवान, हर कोई इतने रुपए खर्च कर सकता है? काश ये रुपए उसके पास होते, ढंग की एक साड़ी तो आ जाती। पानी खोल कर जब आधा रह गया तब जाकर उसकी विचार तंद्रा टूटी। दोबारा पानी चढ़ाकर वह ट्रे मेकअप प्लेट सजाने लगी। चाय चाहते हुए याद आया कि मौसा जी पहले पानी मांगेंगे, सो दो गिलास पानी के भी भर कर रख लिए। बार बार कौन दौड़ेगा, इससे तो अच्छा था अम्मा के साथ ही लौट जाती। पर मौसी तो रोने ही बैठ गई। जी जी, मेरा घर क्या एकदम सूना कर जाओगी? कम से कम नीता के लौटने तक तो इसे यहाँ रहने दो, मैं इसी को देखकर जी जुड़ा लूँगी। ऐसी विनती अम्मा कैसे नकार देती। अब नीता जी वहाँ मसूरी में हनीमून मना रही हैं और मीनू यहाँ बेगार ढो रही है। चाय लेकर कूलर वाले कमरे में गई तो ऐसा लगा जैसे राजस्थान से शिमला आ गई हो। उसे देखते ही सब लोग अपना अपना काम छोड़ ट्रे के पास सिमट आए। कुछ देर पहले ये लोग मौसी को चाय के लिए कोस रहे थे। शाबाश बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, मौसा जी ने पानी का गिलास लेते हुए तृप्त मन से आशीर्वाद दिया। लड़कियों को ऐसा आशीर्वाद दिया जाता है, मौसी ने कहा। ऐसा कहो कि भगवान करे तुम्हारे हाथ भी जल्दी से पीले हो जाए, वैसे हमारी मीनू जिस घर में जाएगी उजाला करेगी। मीनू शर्म से लाल हो गई। अरे, इसकी शादी की बात तो अभी लग रही थी, मौसा जी बोले। अच्छा, कहाँ, मौसी ने उत्सुकता से पूछा। मीनू ने भी अपने प्राण कानों में समेट लिए। अरे, बारात जाने वाले दिन बड़ी बन ठन कर घूम रही थी ना, तो समधी जी ने पूछा कि किसकी लड़की है। मैंने कहा अपनी ही है, नीता की मौसेरी बहन है, पसंद है तो कहिए, छोटे कुंवर जी के लिए बात चलाऊं। फिर क्या बोले। बोले कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम तो एक ही मंडप में दोनों को ब्याह ले जाते। मीनू को लगा इतनी खुशी वह झेल नहीं पाएगी। बड़े लालची है बूढ़ो, मौसी बोली, सोचा होगा इतना ही सब काम वहाँ से भी मिलेगा, तभी तो झट से हाँ भर दी। इंद्रधनुषी बादलों में उड़ता हुआ मीनू का मन दन से जमीन पर आ गिरा। वह एकदम होश में आ गई। मौसी ठीक ही तो कह रही है, नीता के ससुर बेचारे कैसे जानेंगे कि सामने जो सजी सवरी लड़की खड़ी है उसका सारा सिंगार उधार का है, चंदे का है। लेकिन दहेज तो कोई उधार नहीं देता ना, ना उसके लिए चंदा किया जा सकता है। मौसा जी ने जो नीता को दिया है उसकी क्या वह अपने लिए कल्पना भी कर सकती है? बाबूजी उसके लिए एक ढंग की साड़ी तो नहीं ला सके। बेटे, जरा पान दान उठाना, मौसा जी ने कहा। वह एकदम आज्ञाकारी सेवक की तरह उठ खड़ी हुई। यही औकात है उसकी, इसी में उसे रहना है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।